नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में लाल किला कार विस्फोट के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली विस्फोट के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में अब तक 47% से अधिक मतदान की खबर। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आतंकवाद के वित्त पोषण को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आग्रह। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची, सरकार ने ग्रैब 3 लागू किया। कक्षा 5 तक स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। और हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सोलोए को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए इस वर्ष के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में कहा है कि इस भयावह घटना के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भूटान के थिम्पू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज वे बहुत भारी मन से भूटान आए हैं और कल शाम दिल्ली में हुई घटना ने सभी को बहुत व्यथित किया है।
दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने कार विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए आज अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। घटना के तुरंत बाद सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस, NIA, NSG और फोरेंसिक की टीमों ने जांच शुरू कर दी है और विस्फोट का सटीक विवरण जल्द ही सामने आ जाएगा। एक रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रहा वाहन लाल बत्ती पर रुका और उसी वाहन में विस्फोट हुआ। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह से बात की। श्री शाह ने कार विस्फोट स्थल का दौरा किया और LNJP अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने विस्फोट की गहन जांच का वायदा किया। अधिकारियों ने किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को तुरंत सहायता सुनिश्चित करने के लिए आपात हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस आपात सेवा के लिए 112, दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष के लिए 011-22-91-0010 या 011-22-91-0011, LNJP अस्पताल के लिए 011-23-23-34-00, दिल्ली अग्निशमन सेवा के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 या 108 और एम्स ट्रॉमा सेंटर के लिए 011-26594405 हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है, अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से खुले रहेंगे। लाल किला बृहस्पतिवार तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। सुपर्णा और भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली कार विस्फोट के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आज नई दिल्ली में दिल्ली रक्षा संवाद को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने बताया कि प्रमुख जांच एजेंसियां कार विस्फोट की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। श्री सिंह ने दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
मैं दिल्ली में कल हुई दुखद घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस मंच से मैं अपने नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और विस्तृत जांच कर रही हैं। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं औपचारिक रूप से राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और किसी भी स्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दिल्ली में कल हुए विस्फोट के बाद कई राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिला प्रशासन और पुलिस ने श्रीमाता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के आधार शिविर कटरा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। तमिलनाडु में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अपने निर्धारित समय से 3.5 घंटे पहले और घरेलू उड़ानों के लिए 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए दिन में 1 बजे तक 47% से अधिक मतदान की खबर है। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय के पास। धर्मेंद्र, इस क्षेत्र में मुकाबला किन दलों के बीच है और प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ?
जी कनक, अगर प्रमुख मुकाबलों की बात करें तो महागठबंधन और जो एनडीए है उसके बीच जो है मुकाबला है, और जो AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार अच्छी खासी संख्या में खड़े किए हैं। तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला की उम्मीद है। और जिस तरह से पोलिंग के जो है शुरुआती जो 6 घंटे के जो ट्रेंड्स आए हैं, रुझान आए हैं, उसको देखकर लग रहा है कि इस बार जो है दूसरे चरण में रिकॉर्ड मतदान होने की संभावना है। और पिछली बार के सारे जो वोटिंग टर्नआउट के है वो उससे अधिक मतदान होगा। अगर किशनगंज की ही बात करें, सीमांचल का प्रमुख क्षेत्र है, तो पूरे 22 जिलों में सबसे अधिक 52% लगभग जो है मतदान दर्ज किया गया है। उसी तरह से सीमांचल के अन्य जिलों, अररिया में करीब 47% जो है, पूर्णिया में करीब 50%, और जो ये जिले हैं पहले भी अपने हाईएस्ट मतदान के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर मतदाताओं का जो रुझान काफी जो है अपने अधिकारों के प्रति देखा जाता है और लोग बड़ी संख्या में वोट डाल।
धर्मेंद्र, जानकारी के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं बेतिया, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता आनंद। आनंद, वहां प्रमुख उम्मीदवार कौन है और लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है?
पश्चिम चंपारण जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। मतदान शुरू हुए 7 घंटे से अधिक का समय हो गया है और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 बजे तक 48.91% मतदान की खबर पश्चिम चंपारण में है। इन 9 विधानसभाओं में सबसे अधिक वाल्मीकि नगर क्षेत्र में 53.60% मतदान हुआ है, जबकि बेतिया में 42.57% और रामनगर में 49.34% मतदान हुआ है। अगर मैं प्रमुख उम्मीदवारों की बात करूं तो बेतिया से मौजूदा विधायक और मंत्री रेणु देवी 6ठी बार अपना किस्मत आजमा रही हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के वसी अहमद और जनसुराज पार्टी के अनिल कुमार सिंह के साथ है। वहीं लौरिया सीट से उम्मीदवार विनय बिहारी, भाजपा उम्मीदवार विनय बिहारी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां विकासशील इंसान पार्टी के रणकौशल प्रताप सिंह ने उनका मुकाबला है। वहीं कुल प्रत्याशियों की संख्या की बात करें तो कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में 72 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
आनंद, धन्यवाद जानकारी के लिए। 3,70,00,000 से अधिक मतदाता, 136 महिलाओं सहित 1,302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 7 निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान के सुचारू संचालन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पहली बार वोट डाल रहे युवा मतदाताओं से मतदान कर दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। दोनों चरणों के वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरनतारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपड़ा विधानसभा सीट हैं। वोटों की गिनती 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के थिम्फू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन भूटान, वहां के शाही परिवार और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सदियों से भारत और भूटान के बीच संबंध बहुत गहरे, सौहार्दपूर्ण और सांस्कृतिक रहे हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर भाग लेना भारत और उनकी प्रतिबद्धता है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
थिम्फारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग दोगोपे ने किया। चिंगलिमिथांग स्टेडियम में आते ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाही सेना के मिलिट्री मार्च के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। आज भारत और भूटान के प्रधानमंत्री 1020 मेगावाट के पुनन सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, थिम्फू।
पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से नेपाल तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगी सीमाएं बंद कर दी गई हैं और इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब नवादा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र। दीपेंद्र, मतदान समाप्त होने में कुछ ही घंटे रह गए हैं, गति कैसी है मतदान की?
बिल्कुल कनकलता, नवादा जिले में मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मैं इस समय हिसुआ विधानसभा के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर हूं और मतदान शुरू हुए करीब 7 घंटे का समय हो चुका है और अभी भी मतदान केंद्रों पर काफी संख्या में युवा और महिला मतदाता हैं। पूरे नवादा जिले में लगभग दोपहर 1 बजे तक 44% मतदान की खबर है। आपको बता दूं कि 2020 में लगभग 50% मतदान हुआ था और इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह का उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछले विधानसभा से अधिक जो है इस बार मतदान होगा। आपको बता दूं कि नवादा, हिसुआ और वारसलीगंज में मतदान शाम 6 बजे तक होगा, वहीं सुरक्षा कारणों की वजह से रजौली और गोविंदपुर में मतदान जो है शाम 5 बजे तक चलेगा। जी,
जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आतंकवाद में इस्तेमाल अवैध हथियारों के लिए वित्तीय सहायता देने और उनकी तस्करी करने वालों पर कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आग्रह किया है। छोटे हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि देश ने दशकों तक सीमापार आतंकवाद से संघर्ष किया है, जिसे अक्सर अवैध हथियारों की तस्करी से बढ़ावा मिला है। पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि आतंकवादी गुटों की छोटे हथियारों तक पहुंच गंभीर वैश्विक खतरा है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सोलोय को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए इस वर्ष के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये घोषणा लंदन में आयोजित एक समारोह में की गई। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे चरण के अंतर्गत सख्त प्रदूषण विरोधी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है और कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में बदल दिया गया है। निजी BS3 पेट्रोल वाहनों और BS4 डीजल के हल्के मोटर वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिल्ली में लाल किला कार विस्फोट के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली विस्फोट के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में अब तक 47% से अधिक मतदान की खबर। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आतंकवाद के वित्त पोषण को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आग्रह। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। सरकार ने ग्रैप 3 लागू किया। कक्षा 5 तक स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सोलोय को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए इस वर्ष के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।